अगले दिन सूरज सर चढ़ाया था। रात को देर से सोने के कारण आहना की नींद अब तक नहीं खुली थी। नीचे ड्राइंग रूम में जितेंद्र जी बैठे अखबार पढ़ रहे थे। टेबल पर रखी चाय की प्याली न जाने कब से उनकी राह देख रही थी। आखिर में जितेंद्र जी का ध्यान उस पर गया। उन्होंने अखबार साइड किया और चाय की प्याली उठाते हुए बोले, भाग्यवान, हमारी दोनों बिटिया कहाँ हैं? उनके सवाल पर रसोई से जयंती जी की उलझन भरी आवाज आई, हमें क्या मालूम कहाँ है, अभी तक दोनों में से कोई कमरे से बाहर नहीं निकली है, अभी जाकर देखते हैं, पता नहीं अभी तक उठी भी होंगी या नहीं। बोलते बोलते वे रसोई से बाहर आईं और सीढ़ियों की ओर बढ़ गईं। यहां उन्होंने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया और वहां दरवाजे से दृशांक ने घर में कदम रखा। आ गए निशांत को छोड़कर। एक सरसरी नज़र उस पर डालते हुए जितेंद्र जी अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करने लगे, मतलब कि अपने अखबार की बची हुई खबरों को पढ़ने लगे। दृशांक ने सहमति में सर हिलाया, जी पापा, छोड़ आया। उसने गाड़ी की चाबी टेबल पर रखी और उनके बगल में बैठते हुए टीवी ऑन कर दिया। बस इसके बाद टीवी में न्यूज़ शुरू हुआ और दोनों बाप बेटे बड़े ही ध्यान से दुनिया जहां की खबरों को सुनने लगे। उनका ये रोज़ का रूटीन था जिसके दोनों आती हो चुके थे। बिना न्यूज़ के ना उनका दिन शुरू होता और ना ही ख़त्म, और अक्सर दोनों साथ बैठकर न्यूज़ देखते हुए डिबेट भी कर लिया करते थे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने का हक़ इस घर में सबको मिला था, और मास्टर जी ने अपने सभी बच्चों को अपना मत बिना डरे सामने रखना और सच्चाई के लिए लड़ना सिखाया था, जिसे उनकी छोटी लाडली ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था, इसलिए आए दिन घर पर उसके अलग अलग कारनामों की शिकायतें आया करती थीं। खैर, ये तो रोज़ की कहानी थी, अब ज़रा कहानी पर चलते हैं। जयंती जी कमरे में पहुंची तो अंतरा की तरफ का बिस्तर खाली था, जबकि आहना तकिए में सर छुपाए अब भी सो रही थी। कमरे में मौजूद खिड़की पर पर्दे लगे थे और नाइट बल्ब चल रहा था, जिससे कमरे में अब भी लगभग अंधेरा ही था। जयंती जी ने सबसे पहले मेन लाइट ऑन की, खिड़की पर से पर्दे हटाते हुए बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया, जिससे सूरज की सुनहरी किरणें पूरे कमरे में फैल गईं। फिर आहना के सिरहाने के पास आकर बैठ गईं और बड़े ही मोहब्बत से उसके बालों को अपनी हथेली से सहलाते हुए उसे पुकारा, अनु बेटा, आज तो आप बड़ी देर तक सोती रहीं, देखिए सूरज सर पर चढ़ाया है, चलिए अब उठ जाइए, आज स्कूल नहीं जाना आपको, लेट हो जाएंगी। आहना उनकी बातें सुनकर नींद में कुनमुनाई, फिर उनकी गोद में सर रखकर उनके आंचल से अपना चेहरा ढककर सोते हुए उनींदी सी बोली, जाना है माँ, बस थोड़ी देर सोने दीजिए, रात में बहुत देर से नींद आई। मेरा बच्चा, अभी उठ जा, स्कूल जाकर अपना काम करके जल्दी लौटना है आपको, आज आपको देखने लड़के वाले आ रहे हैं। पहले तो आहना नींद में कसमसाई, पर जैसे ही आखिरी के शब्द उसके कानों में पड़े, उसकी सारी नींद एक झटके में गायब हो गई। वह एकदम से उठकर बैठ गई और अपने बिखरे बालों को आंखों पर से हटाते हुए उसने उन्हें पुकारा, माँ। हाँ बेटा, जयंती जी बड़े ही प्यार से उसके बिखरे बालों को संवारने लगी। आहना ने मुंह बिचकाया और उदास नजरों से उन्हें देखते हुए बोली, माँ, क्या लड़के वालों का आना पोस्टपोन नहीं हो सकता? क्या हो गया बेटा? जयंती जी उसकी बात सुनकर चौंक गईं कि जाने क्या बात हो गई। जवाब में आहना ने सर झुका लिया, बस मम्मी, कुछ ठीक नहीं लग रहा। पिछली बार वाली बात अब भी दिल में बैठी है? जयंती के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और कुछ परेशान सी लगने लगी वे। पुरानी बात उठते देखकर आहना ने इनकार में सर हिला दिया, नहीं माँ, वो बात नहीं, बस घबराहट सी हो रही है। बीती बात भूल जाओ बेटा, वो हमारी लापरवाही का नतीजा था, पर इस बार सब अच्छे से देखने सुनने और पता करवाने के बाद लड़के वालों को घर बुलाया है। उस पर तुम्हारे मामा के जानकार हैं, तुम तो जानती हो कितना चाहते हैं वो तुम्हें, तुम्हारे लिए कोई गलत रिश्ता नहीं बताएंगे वो। उन्होंने बड़े ही प्यार से उसे समझाया। उनकी बात पर सहमति जताते हुए आहना ने मायूसी से कहा, माँ, हम जानते हैं, पर आप सब इतनी जल्दी हमारी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? वही सवाल जो शायद हर लड़की अपने माता पिता से करती है, आखिर बाबुल के आंगन की कौन सी चहचहाती चिड़िया उस आंगन को छोड़कर जाना चाहती है? सबको मायका और बाबुल का आंगन प्यारा होता है, वहां से जाने का मन कभी करता ही नहीं। अपनी समझदार बेटी का सवाल सुनकर जयंती जी मुस्कुराए बिना न रह सकी। जल्दी कहाँ है बेटा, 27 की होने वाली हो और रिश्ता कौन सा एक दिन में मिल जाता है, अभी ढूंढ रहे हैं, अच्छा रिश्ता मिलेगा तभी बात आगे बढ़ेगी, और अभी ब्याह कहाँ करवा रहे हैं, पहले तो आपके भैया का ब्याह होगा, हाँ नेक लड़का और अच्छा घर परिवार मिला तो रिश्ता पक्का कर देंगे हम, इतनी जल्दी आपको विदा थोड़ी ना करेंगे। माँ, क्या शादी करना ज़रूरी है, हमें आप सारी उम्र अपने पास नहीं रख सकती? लाडो, बेटियां माँ बाप की कितनी ही लाडली हों, पर एक ना एक दिन उन्हें अपनी बिटिया का ब्याह करके उन्हें विदा करना ही होता है, ये माता पिता का अपनी बेटी के प्रति सबसे अहम फ़र्ज़ है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, इस समाज को भी मुंह दिखाना है, बेटी को सारी उम्र अपने घर बिठा कर रखेंगे तो समाज हमें इज्जत से जीने देगा। माता पिता का सम्मान इसी में है कि इज्जत से बेटी को घर से विदा करें, पर विदाई का मतलब ये नहीं कि आप पराई हो जाएंगी, आप हमारी बिटियां हैं और हमेशा रहेंगी, ये घर आपका है और सदा आपका रहेगा, आप तो हमारी समझदार बेटी हैं, अपनी माँ की बात समझिए, हम और आपके पापा जो करेंगे आपके भले के लिए ही कहेंगे। उनकी इस दलील के आगे आहना निशब्द हो गई और खामोशी से सर हिला दिया। जयंती जी ने उसके गाल को सहलाते हुए उसे प्यार किया। हमारी समझदार बच्चा, चलो शाबाश, उठो, सारी चिंता फिक्र छोड़ दो और जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, हम नाश्ता लगाते हैं। आहना ने सर हिलाया और पलंग से नीचे उतरकर अलमारी की ओर बढ़ गई। जयंती सी ने जाने के लिए पलटी ही थी कि अंतरा की नाराजगी भरी आवाज उनके कानों से टकराई। सारा प्यार बस जीजी के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं आपके पास। आवाज सुनकर जयंती जी ने पलट कर देखा तो बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी अंतरा नाराजगी भरी निगाहों से उन्हें देख रही थी। जब आपका ब्याह करेंगे तो आपको भी प्यार करेंगे। ओ, मतलब ये प्यार नहीं, रिश्वत है। जैसे बकरे को हलाल करने से पहले उसकी पूजा की जाती है, ब्याह की सूली पर चढ़ाने से पहले आप कुछ पर प्यार लौटाएंगी? तो रहने दीजिए माताश्री, हमें ऐसी मोहब्बत ना चाहिए, हमें ऐसी कोई सूली पर लटकने का शौक नहीं है। अंतरा ने बुरा सा मुंह बनाया, फिर बाल झटकते हुए ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ गई, जबकि आहना और जयंती जी दोनों उसे हैरत से देखती रह गईं। पर अंतरा बेफिक्री से तैयार होने लगी थी। जयंती जी ने बेबसी से सर हिलाया और वहां से चली गईं, जबकि आहना अब भी हैरान परेशान सी अंतरा को देखे जा रही थी। पहले तो अंतरा उसे जानकर नजरअंदाज करती रही, फिर उसकी तरफ पलटते हुए बोली, जी जी, मैं बस मजाक कर रही थी, आपको मेरे रहते कोई बलि पर चढ़ा सकता है भला? आप चिल मारो और सब मुझ पर छोड़ दो। वाई फियर वेन अंतरा इज हियर? आई विल हैंडल एवरीथिंग एंड एवरीवन। अंतरा ने शरारत से आंखें चमकाई और बेफिक्री से जवाब देते हुए आकर उससे लिपट गई। उसकी बेबाकी, शैतानियों और उल्टी पुल्टी हरकतों से वो बखूबी वाकिफ थी। अगर उसने कहा है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर लगाएगी, पर कभी अपनी जीजी को किसी गलत रिश्ते में बंधने नहीं देगी, चाहे उसके लिए अकेले पूरे परिवार के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े। उसे फर्क नहीं पड़ता, सबकी डांट क्यों ना खानी पड़े, उसे परवाह नहीं, चाहे बदले में उसे सजा ही क्यों ना भुगतनी पड़े, उसे कोई फिक्र नहीं, उसे बस अपनी जीजी की खुशियों से मतलब है। उसकी बात सुनकर आहना के परेशान चेहरे पर इत्मीनान के भाव उभर आए। उसने प्यार से उसके गाल को छुआ और मुस्कुरा दी। तुम बस थोड़ी शरारतें कम कर दो तो दुनिया की बेस्ट बहन हो, और आज जैसी भी हूँ वर्ल्ड की बेस्ट एंड बेस्ट जीजी है। अंतरा ने चहचहाते हुए उसके गाल को चूम लिया। उसकी ये सदा पर आहना हंस पड़ी और साथ ही अंतरा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी।
आहना तैयार होकर बाहर आई, तब तक बाकी सब नाश्ते पर बैठ चुके थे और जयंती जी सबको उनकी पसंद का नाश्ता करवा रही थी। आहना सबको गुड मॉर्निंग विश करते हुए अपनी चेयर पर बैठी ही थी कि उसके सामने पोहे की प्लेट के साथ जूस का ग्लास भी हाजिर हो गया। आहना ने लबों पर सौम्य से मुस्कान सजाए अपनी माँ को देखा तो उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए खाने को कहा और वापस रसोई में चली गईं। अनु बेटा, घर जल्दी आ जाना। नाश्ते करते हुए सरसरी तौर पर जितेंद्र जी ने उसे ये कहा था, जिस पर आहना ने सर झुकाए हामी भर दी। उसके चेहरे पर छाते उदासी के बादलों को अंतरा की चील की तेज नजरें भांप गईं और उसने तुरंत ही आहना का ध्यान अपनी ओर खींचा। जी जी, मुझे भी रास्ते में कॉलेज छोड़ दो, देर हो गई मुझे और मेरी धन्नो कल से बीमार पड़ी है। अंतरा की कोशिश रंग लाई और अपनी परेशानी भूलकर आहना ने अपना पूरा ध्यान उस पर लगा लिया। तो इलाज क्यों नहीं करवाया तुमने अपनी धन्नो का? उसके सवाल पूछने की देर थी कि अंतरा बेचारी सी शक्ल बनाई तपाक से बोल पड़ी, कैसा करवाती इलाज, भैया ने पॉकेट मनी आधी कर दी है, पैसे ही नहीं थे मेरे पास। तो तुम बेवजह पैसे उड़ाती भी बहुत हो, कभी मूवी देखने पहुंचाती हो तो कभी बाहर लंच, इनसे भी मन नहीं भरता तो मॉल की खाक छानने लगती हो। दृशांत ने तुरंत ही उसकी गलतियां गिनवाते हुए उसे डांटा और अंतरा ने बिल्कुल मासूम बच्ची जैसा चेहरा बना लिया, जैसे डांट पड़ने पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो उस पर। भैया, यही तो उम्र है ये सब करने की, एक बार जिम्मेदारियां सर पर आ जाएंगी तो इन बेफिक्री भरे दिनों को बस याद ही कर सकेंगी। बहन ने खैरियत क्या की, मैडम अंतरा की तो सारी उदासी पल में फुर हो गई और जीजी पुकारते हुए वो बगल में बैठी आहना से लिपट गई। आहना जहां उसका बचपना देखकर मुस्कुरा उठी, वहीं दृशांत ने बेबसी से सर हिला दिया। नाश्ता खत्म कर चुका था सो हाथ धोए और पॉकेट से वॉलेट निकालकर 500 के 2 नोट निकालकर उसके सामने रख दिए। लो, आज अपनी धन्नों का इलाज करवा लेना और कम पड़े तो एक फ़ोन कर देना, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूंगा। थैंक यू भैया, अंतरा ने झट से पैसे उठाते हुए बड़ी सी स्माइल पास की, जबकि दृशांत सर हिलाते हुए वहां से उठकर चल दिया। अंतरा ने अब अपनी नजरें घुमाई और क्यूट सी शक्ल बनाकर अपनी पलकों को झपकाया। मक्खन लगाने की कोशिश सफल रही। आहना ने भी अपने पर्स से पैसे निकालकर उसे थमा दिए और साथ ही उसके सर पर हल्की चपत लगाते हुए उसे समझाया, बेवजह इतने पैसे मत उड़ाया करो, किसी दिन भैया का गुस्सा जागा तो हम भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगी। तब तो सीधे पापा के पास दौड़ लगाऊंगी, वो कान पकड़कर भैया को सीधा कर देंगे, है ना पापा? अंतरा ने जितेंद्र जी का रुख किया, मानो उनसे अपने विश्वास पर मोहर लगाने की दरख्वास्त कर रही हो। जितेंद्र जी, जो अपनी छोटी लाडली की कारस्थानी देखकर मन मन मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने जैसे ही हामी भरी अपनी योजना पर, अंतरा फख्र से मुस्कुरा उठी कि अब तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने पैसे रखे और उठी ही थी कि पीछे से जयंती जी की आवाज़ आई, अंतरा आज जल्दी घर आना, बहुत काम पड़े हैं। माता जी, आपका आदेश हो तो कॉलेज ही नहीं जाती आज। अंतरा ने भी मौके पर चौके की जगह सीधे छक्का लगाया था, कॉलेज जाना किस कमबख्त को था। उसका बस चलता तो कब की पढ़ाई से जान छुड़ा लेती और अब भी मौका हाथ लगते ही बच निकलती थी। सो आज फिर मौके का फायदा उठाना चाहा, पर सोफे पर बैठे दृशांत ने उसके सारे इरादों पर घड़ा भर भर कर पानी उंडेल दिया था। बिल्कुल नहीं, चुपचाप कॉलेज जाओ तुम। पढ़ाई में इस लड़की का जरा भी मन नहीं लगता। इसे तो बस बहाना चाहिए पढ़ाई से जान छुड़ाने का, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चुपचाप कॉलेज पहुंचो और आज तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा तुम्हें, और दोपहर में घर पहुंचाना। अगर कॉलेज से निकलकर सड़कों पर तफरी लगाती नजर आई तो आज खैर नहीं तुम्हारी। दृशांत का हमेशा वाला सख्त रवैया और ये बेवजह की धमकी, बेचारी अंतरा का पूरा मूड ही खराब हो गया। उसने बुरा सा मुंह बनाकर मन ही मन उसे कोसा और तुनकते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, मैं जीजी के साथ जाऊंगी। पर हम तो आज भैया के साथ जा रहे हैं, पल्लवी भी साथ चल रही है, तुम भी चलो साथ। अंतरा ने आहाना की बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाया। मन तो नहीं था, पर जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सुमन मारकर अपने खड़ूस भैया को ही सर पर सवार कर लिया। जल्द ही